ओम शांति। हमारे पास जो एक महान शक्ति है संकल्प शक्ति, इसी के ऊपर हमारे बीच क्लास कराने के लिए पधारे हैं डॉक्टर प्रेमा संजी। ओम शांति।
ओम शांति। हमारी इस संस्था की एक टीम तैयार की दादियों की, और हम सभी जानते हैं उस टीम के कारण आज परमात्मा जो चाहता है एक उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बनता जा रहा है। तो परमात्मा ने संकल्प दिया, ब्रह्मा ने उसको प्रैक्टिकल किया, और फिर हमारी आदरणीय दादी जी ने उसी संकल्प को आगे बढ़ाया, और आप समान बनाते बनाते आज विश्व में हमारे सामने एक नई दुनिया की रचना का जो प्रैक्टिकल स्वरूप है वो बनता जा रहा है। परमात्मा जो भी हमें ज्ञान दे रहे हैं उसका अगर हम गहराई में जाकर सोचें तो उसका मेजर लेसन यही सिखाता है हमें मुरलियों के द्वारा कि हम बाप समान बन जाएं। जैसा हमारा बाप है, ब्रह्मा बाप हैं, बाप दादा हैं, दादियां हैं, उनके समान हम बनते जाएं। अब हम कैसे पहचाने कि हम उनके समान बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें? तो एक मुरली में बाबा ने कहा कि मैं सुनार हूं, गोल्ड स्मिथ हूं, सोने में अलॉय जो पड़ जाती है उसको खत्म करके मैं उसको सच्चा सोना बनाता हूं। तो एक माता ने ये चीज अपने मन में पकड़ ली कि बाप भगवान सुनार भी है, तो उनके परिवार में ही एक सुनार था। तो उस माता ने सोचा कि मैं जाकर देखूं भगवान सुनार कैसे है। तो वो उस सुनार के पास गई, उसके पास जाकर बैठ गई और देखने लगी कि ये सुनार क्या कर रहा है। और हम सभी जानते हैं कि सुनार उसके अंदर जो भी अलॉय है, मिक्सचर है, उसको खत्म करते करते आग पर तापते तापते उसको मोल्ड करके रियल गोल्ड बनाता है। तो उससे कई क्वेश्चन उसने माता ने पूछे कि आपको बिल्कुल कंसंट्रेट करना पड़ता है, आग के पास बैठना पड़ता है, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जा सकता क्योंकि थोड़ा सा भी इधर गया तो पूरा सोना खत्म हो जाएगा। तो उसने बोला हाँ, पूरा मुझे अपनी पूरे संकल्प एक जगह रखने पड़ते हैं, हाथ हिला नहीं सकता। फिर लास्ट क्वेश्चन उस माता ने पूछा कि आपको कैसे पता लग जाता है कि ये रियल गोल्ड हो गया, रियल गोल्ड यानी बाप समान कैसे हो गया? तो उसने कहा जब आखिर में मैं अपना चेहरा इस सोने में देख सकता हूं तो तब मुझे लग जाता है कि इसके अंदर सब जो मिक्सचर था वो खत्म हो गया। इसी तरह से हम भी अपनी स्थिति को चेक कर सकते हैं कि जब मेरा चेहरा परमात्मा के उससे मिलता है तो मेरे अंदर जो अलॉय हैं वो खत्म हो गए। इसको यूं कह लें कि वही संकल्प चले जो परमात्मा चाहता है। संगम पर हमें परमात्मा ने सिलेक्ट किया है, हमें लिया है, अपने कार्य के लिए लिया है, और उस समय अगर हम अपने को संपूर्ण समर्पण कर देते हैं फिर जो परमात्मा चाहे हमसे कराए वही संकल्प चले जो इस समय मुझे जरूरी है। ये हमारी स्टेज फाइनल की तभी आती है जब हम अपनी चेकिंग करते जाएं। बाबा की कई मूल्यों में पूरा जो बताया है, जो पूरा परिवर्तन हम सभी को बताया है वो संकल्प के आधार पर बताया है कि कैसे हम संकल्प से सब कुछ कर सकते हैं। संकल्प में इतनी शक्ति है, इतना पावर है, अगर हम उसको ठीक तरह से यूज करें कॉन्फिडेंस के साथ, फेथ के साथ, तो वही संकल्प हम अपने लाइफ के लिए, दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे भी हम कहीं पहुंच सकते हैं, किसी भी आत्मा से बात कर सकते हैं। जो बाबा ने कहा अपनी मुरली में ही, अंतवाह की स्टेज का अर्थ होता है कि जब हम इस शरीर के भान से ऊपर होकर हम संकल्पों के द्वारा सेवा करते हैं और किसी भी आत्मा के अंदर जो संस्कार है उसका परिवर्तन कर देते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसी को ही अंतवाहक स्टेज कहते हैं। हमें कहीं जाना नहीं है, एक जगह बैठकर भी हम संकल्पों के द्वारा सेवा कर सकते हैं। इसलिए इस सीजन की जो मुरलियां चली उसमें बाबा ने बार बार इशारा इस पॉइंट पर दिया कि वाचा की सेवा के साथ साथ अब समय आ गया है कि अब आप संकल्पों की भी सेवा पे ज्यादा ध्यान दो, अटेंशन दो, दोनों का बैलेंस रखो, क्योंकि वाचा की सेवा एक लिमिट तक जाती है और संकल्प की सेवा बेहद तक जाती है, अनलिमिटेड जाती है। इसलिए पहला जो कैरेक्टर हमें चाहिए संकल्पों की सेवा के लिए, वो जो मैंने ब्रह्मा बाप में देखा, अनलिमिटेड बेहद की दृष्टि वृत्ति चाहिए, जो पांचों मूल्यों में बाबा ने टच किया कि अब समय आ गया है कि हम छोटी छोटी चीजों से अपने टाइम को वेस्ट न करें और बार बार हमारी जो दृष्टि और वृत्ति हो बेहद की हो, अनलिमिटेड हो, तो हमारे अंदर के भी जो सेल्स हैं वो खुलना चालू होंगे। तो मैंने इस लेक्चर को साइंस, मेडिकल साइंस, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअल साइंस तीनों को कंबाइन किया है। जैसे आजकल कहा जाता है IQ, EQ, SQ। IQ का अर्थ होता है जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलता है, इंटेलिजेंस मिलती है। EQ में तीनों चीजों का मिक्सचर किया है, क्योंकि ये लेक्चर बाहर वालों के लिए, जो लोग बहुत हाई IQ वाले रहते हैं उनके लेवल का बनाया है, और इसमें हमारा ज्ञान को भी ब्लेंड किया है कि कैसे नॉलेज को हम अच्छी तरह दे सकें। हर व्यक्ति में बढ़ने की इच्छा है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे अंदर जो कुछ है उसका उपयोग मैं अपने जीवन में करूं। डिजायर टू ग्रो एंड मेक मोस्ट ऑफ अवर सेल्फ, हमारे अंदर जो शक्तियां समाई है उसको हम अपने जीवन में यूज करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए कहा गया परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। ये देखा गया कि जीवन में जो लोग सफल होते हैं, आगे बढ़ते हैं, विश्व के आगे चमकते हैं, उन सब के अंदर एक खास बात देखी गई। वो खास बात थी कि उन्होंने जीवन में एक खास मकसद को चुना, जिसको इंग्लिश में कहा गया पर्पस ऑफ द लाइफ, मीनिंग ऑफ द लाइफ, कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मकसद क्या है। और जो व्यक्ति अपने मकसद को पहचान जाता है वो जीवन में सफल हो जाता है। और खुश वो है जो अपने अंदर रोज अपनी आत्मा का कोलंबस बनकर उतरता है और नई दुनिया की रचना करता है। हमारे अंदर जो सागर समाया हुआ है, उस सागर में अगर हम रोज उतरते हैं और एक चीज को अपने जीवन में लाते हैं तो हम भी सफल हो सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी चीजें न सोचें, केवल हर दिन एक छोटी सी चीज को लेकर देखें, उसका यूज करें, प्रयोग करें, उसका मंथन करें, तो हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तीन स्टेजेस हमारे लाइफ में रहती है, कथन, मथन, मंथन और मग्न अवस्था। कथन यानी बोलना, और उस कथन को अगर हम मंथन करते हैं, चर्ण करते हैं, जो बाबा इसके ऊपर बहुत जोर देता है कि रोज अगर हम ज्ञान का मंथन करते हैं तो तब हम मग्न अवस्था में जाते हैं, और जब मग्न अवस्था आ जाती है تو کوئی بھی چیز کا اثر ہمارے اوپر نہیں ہوتا ہے. نیکسٹ. اور ہم سبھی نے دیکھا کہ ہمارے سامنے سب سے اچھا ماڈل بھگوان نے دیا وہ برہما باپ کو دیا. ایک بہت اچھا کوٹیشن ہے پتانجلی کا کہ جو ویکتی اپنے جیون میں مقصد کو لے آتا ہے, پرپس کو لے آتا ہے, اس کے وچار سب دھاراؤں کو توڑ دیتے ہیں, سب لمیٹیشن کو توڑ دیتے ہیں, اور اس کا من اوپر کی طرف بڑھتا جاتا ہے, شریر کے بھان سے اوپر ہوتا جاتا ہے, اور وہ ایک نئی دنیا کی رچنا کرتا ہے. اور یہی ہم نے دیکھا, بھگوان نے انسپائر کیا اور برہما باپ نے کریٹ کیا. لیڈرز آر دوز ہو ٹرن انفارمیشن انٹو انسائٹ, ہو ٹرن انفارمیشن انٹو ویژن. لیڈرز وہی بنتے ہیں جو نالج کو اس کا سوروپ بن کر دوسروں کو راستہ دکھاتے ہیں, لائٹ ہاؤس بتاتے ہیں. اس لیے گیان کیول سننا نہیں ہے, گیان کا سوروپ بننا ہے. جب تک ہم اس کا سوروپ نہیں بنیں گے, امباڈیمنٹ نہیں بنیں گے, تب تک ہمارے مائنڈ میں طاقت نہیں آئے گی, من چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہی اٹکا رہے گا. اس لیے جب ہم اس کا امباڈیمنٹ بن جاتے ہیں تب ہم اپنی نئی دنیا کی رچنا کرتے ہیں. اسی لیے انگلش میں کہا جاتا ہے آپ وہی ہو جیسا آپ سوچتے ہو, یو آر واٹ یو تھنک. جو آپ سوچتے ہو وہی بنتے ہو. یہ سب سے بڑا سیکرٹ پرماتما نے ہمیں دیا ہے کہ جیسا سنکلپ کرو گے ویسے ہی سرشتی کا نرمان کرو گے. اگر ہمیں پریورتن کرنا ہے, اپنے جیون میں کچھ بھی پراپت کرنا ہے, تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ اپنے سنکلپ میں پریورتن لانا ہے, درڑتا لانی ہے. اور جب ہم اس میں درڑتا لاتے ہیں تو وہی سنکلپ ہمارا میٹر کا نرمان کرتا ہے, شریر کا نرمان کرتا ہے, پرکرتی کا نرمان کرتا ہے. اس لیے ایک لا بتایا جاتا ہے اسپرچل سائنس میں, لا آف انٹینشن اینڈ ڈیزائر. اس کا ارتھ ہوتا ہے آپ کے اندر جو بھی ڈیزائر ہے اس کو اچھے دل سے آپ وائبریٹ کرنے دیتے ہیں, پرکرتی میں جانے دیتے ہیں, تو وہ ڈیزائر آپ کی فلفل ہو جاتی ہے جو آپ کو چاہیے. نیکسٹ. لائف کا ارتھ ہی ہوتا ہے انرجی جو ہمارے اندر ہے اس کا بہتے رہنا. جتنا انرجی کا فلو اچھا چلتا ہے اتنا ہمارا شریر اچھی طرح کام کرتا ہے. اسی انرجی کو کوانٹم فزکس میں بتایا گیا کوانٹا. کوانٹا کا ارتھ ہوتا ہے انرجی کا اسٹور ہاؤس. اور اس میں جتنی ہماری کوانٹم لیول اچھی ہوتی ہے, انرجی لیول اچھی ہوتی ہے, اتنا ہمارا شریر کا بھی نرمان اچھا ہوتا ہے. نیکسٹ. اسی لیے جتنے بھی اچھے آتھرس آئے سب نے یہی کہا کہ لیڈر وہی ہے جو آپ سمان بنائے, فالوورس نہیں بنائے. یہ سب سے بڑا ڈفرنس ہمارے آرگنائزیشن میں ہے کہ پرماتما ہمیں آپ سمان بناتا ہے, برہما باپ آپ سمان بناتے ہیں, دادیاں آپ سمان بناتی ہے, یہاں فالوورس اور گروڈم سسٹم نہیں ہے. تو لیڈرز کا ارتھ ہے کہ ہم بھی ان کے سمان بنتے جائیں. بدھا نے بھی اپنے لاسٹ سمے میں کہا تھا, گوتم بدھا نے اپنے جو اس کا سب سے اچھا فالوور تھا آنندا, اس کو اپنے انتیم سمے میں کہا تھا, آنندا تو مجھے فالو مت کر, تو اپنے اندر جو ہے اس کو دیکھ, تو اپنا پرکاش خود بن جا, کسی کو تجھے فالو نہیں کرنا ہے, سب سے گیان لینا ہے, پر کبھی بھی من کے دوارا, شریر کے دوارا, بھاوناؤں کے دوارا کسی کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرنا ہے. اور یہی پرماتما ہمیں سکھاتے جا رہا ہے کہ مجھے اپنے من کے دوارا کسی کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرنا ہے. کیونکہ جب انتیم پیپر ہوگا, لاسٹ پیپر ہوگا, وہ کچھ سیکنڈز کا ہوگا, और उस सेकंड में मुझे अपना डिसीजन अपने हाथ में लेकर करना पड़ेगा। उस समय मुझे समय नहीं होगा कि किसी का सहारा लूं। इसलिए बार बार जो टीचिंग देता है परमात्मा, हमें मन से इंडिपेंडेंट बनना है और शरीर से इंटरडिपेंडेंट बनना है। एक दूसरे को सहयोग देना है पर मेंटली हमें इंडिपेंडेंट बनना है। नेक्स्ट। तो जिंदगी क्या है? एक बहुत अच्छे कोटेशन में कहा गया, जिंदगी चॉइस का गेम है। लाइफ इज ए सीरीज ऑफ चॉइसेस। हर व्यक्ति को अपने लेवल पर हर दिन हर सेकंड चॉइस मिलती है। चॉइस यानी आपको अवसर मिलते हैं। अब वो अवसर काय के ऊपर डिपेंड करता है, हम कौन सा अवसर लें, कौन सी चॉइस अपने जीवन में लें, वो हमारे विचारों पर डिपेंड करता है। अगर हमारे विचार अच्छे चलते हैं, सकारात्मक चलते हैं, बहुत यहाँ क्राउडिंग नहीं है, तो हमारी चॉइस अच्छी होगी और हम कभी भी जीवन में हार नहीं खाएंगे। अगर एक चॉइस हम जीवन में गलत ले लेते हैं, एक डिसीजन लाइफ का गलत ले लेते हैं, तो पूरी लाइफ हमारी इससे अफेक्टेड हो जाती है। इसलिए जब कभी भी हमारे पास चॉइस आए, उस चॉइस को हम अच्छी तरह सोच विचार कर जीवन में अप्लाई करें। नेक्स्ट। अगर हम देखें लाइफ 10% है जब एक्चुअली कुछ होता है लाइफ में, 10% कुछ प्रॉब्लम आए, बीमारियां आई, एक्सीडेंट हुआ, कुछ नियर और पास वालों की, नियर एंड डियर की डेथ हुई, तो वो 10% रहता है। पर 90% क्या रहता है? 90% लाइफ का गेम ये रहता है कि हम उस सिचुएशन का सामना कैसे करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। तो हमारे हाथ में अभी भी 90% है। 10% को हम छोड़ दें कि जिस जो हमारे हाथ में है ही नहीं, पर एटलीस्ट 90% हमारे हाथ में है कि जीवन में हम कैसे उस सिचुएशन का सामना करें। इसीलिए परमात्मा कभी ये नहीं कहता है कि मैं तुम्हें सिचुएशन नहीं दूंगा। परमात्मा सिचुएशंस देगा, पर हमारा काम है उस सिचुएशन का सामना करना अच्छी रीति से, और यही हमें परमात्मा सिखाता जाता है। इस लाइफ में कोई गलत चीज नहीं है, जो भी होता है सब ब्लेसिंग्स हैं। जहां हमने जन्म लिया, जो हमें मिला, सब अच्छा है। प्रॉब्लम्स हमें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, प्रॉब्लम्स हमें धक्का मारने के लिए आते हैं, प्रॉब्लम्स हमें नेक्स्ट क्लास के लिए ले जाने के लिए आते हैं। तो प्रॉब्लम्स जीवन के लिए जरूरी है। अगर प्रॉब्लम्स ही नहीं आए तो हम सब क्या हो जाए, हमारा माइंड का काम करना ही बंद हो जाए। इसलिए जो व्यक्ति जितने चैलेंजेस का सामना करता है, वही व्यक्ति दुनिया में आगे बढ़ता है, और जो व्यक्ति चैलेंजेस से भागता है, डरता है, एस्केप करता है, वो व्यक्ति जीवन में हार खा जाता है। इसीलिए ज्ञान मार्ग में भी हम चैलेंजेस से डरे नहीं, क्योंकि कई भाई बहन कहते हैं मैं ऐसा हो जाए जीवन में, मुझे सब कुछ मिल जाए, बस योग करूं सुबह से लेके शाम तक, यहाँ आ जाऊं मधुबन आ जाऊं, यहाँ कितना अच्छा है, चुपचाप बैठ जाऊं सुबह से लेके रात तक। तो इसका अर्थ क्या है? अगर मेरा योग वहां नहीं लग रहा है जहां मैं रहता हूं और यहां आके योग करना चाहता हूं, इसका अर्थ है कि मैं भाग रहा हूं अपने जीवन से। अगर वहां योग अच्छा लगता है तो फिर यहां भी योग अच्छा लगेगा। वहां योग अच्छा नहीं लगता है तो यहां आके आइडियल कंडीशन भी मिल जाए, मकान सब मिले, कपड़ा मिले, खाना मिले, फिर भी मन भागेगा। इसीलिए चैलेंजेस से भागना नहीं है, चैलेंजेस को फेस करना है, और वो डिपेंड करता है हमारे पर्टिकुलर वे से सोचने से आगे। इसीलिए हमें कहा जाता है हम सब ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग दो शब्दों से बना हुआ है, ह्यूमन, ह्यूमस, बीइंग, दो चीजों से बना है। ह्यूमस का अर्थ है मिट्टी, और बिंग का अर्थ है एनर्जी, इसका अर्थ है शरीर, इसका अर्थ है सोल। इसीलिए हमारे इसमें भी भारतीय पद्धति में बताया गया शरीर पांच तत्वों का पुतला है। जब हम शरीर के भान से रहते हैं तो तब हमारे में डर पैदा होता है, मैं और मेरापन आता है, और जब मैं और मेरापन आता है तो अहंकार आता है, ईगो आता है, और हमारा सोचने का तरीका छोटा हो जाता है, हदों में हो जाता है। जब हम चेतना के कॉन्शियस में रहते हैं, बिंग के इसमें रहते हैं, इसी को कहा गया सोल। सोल का अर्थ होता है सोर्स ऑफ यूनिवर्सल लाइट, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट। तो ये जब लाइट के कॉन्शियस में रहते हैं तो हम पूरे यूनिवर्स को लाइट देते हैं। हर विचार एक प्रकाश पैदा करता है शरीर में, हर थॉट शरीर के हर सेल्स में रिएक्शन पैदा करता है। शरीर के एक सेल में 6 ट्रिलियन रिएक्शन होती रहती है एक मिनट में। शरीर में 75 ट्रिलियन सेल्स हैं, मस्तिष्क में 100 बिलियन सेल्स हैं। तो हमारा हर विचार शरीर में कई तरह की रिएक्शन पैदा करता है, और जब हमारा कॉन्शियसनेस में पूरा विश्व रहता है, जो बाबा बार बार कहता बेहद की दृष्टि और वृत्ति, तो तब हमारी लाइट बढ़ती जाती है। जितना हम शरीर के भान में रहते हैं, जिसको कहा गया ईगो कॉन्शियस में रहते हैं, उतना हमारी लाइट कम होती जाती है। इसलिए मेडिटेशन का अर्थ है आप जो हो उसी कॉन्शियसनेस में टिकते जाओ, अपनी कवरिंग को हटाते जाओ। ज्यादातर हम क्या करते हैं अपने जीवन में, अपने को कवर करने की कोशिश करते हैं। जितना हमें अंदर डर पैदा होता है उतना हम टाइट होते जाते हैं, अपने को कवर करते हैं। इसलिए साइकोलॉजी में कहा गया जो व्यक्ति जितना खाली होता है उतना आवाज करता है, जो व्यक्ति जितना संपन्न होता है, फुल होता है, वो शांत हो जाता है। अब मैं ये अपने आप से पूछूं, अगर मैं अभी भी जीवन में नॉइस करते रहता हूं, चिल्लाते रहता हूं, मांगते रहता हूं, तो इसका अर्थ है अंदर से अभी खाली हूं। और रोज अगर मैं ज्ञान के द्वारा अपने को भरता हूं, सुबह परमात्मा से कनेक्शन लेकर चार्ज करता हूं, तो मैं दिन भर शांत नेचुरल रहूंगा, क्योंकि आत्मा का नेचुरल क्वालिटी ही है शांत स्वरूप रहना, उसका नेचुरल गुण है। ये जो 7 गुण हैं परमात्मा ने हमें बताया आत्मा के, वो हमारे नेचुरल हैं, पर जब कभी भी हमें इन 7 में से कहीं कमी रहती है तो हम उसको बाहर से लेने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे में शांति की कमी रहेगी तो मैं क्या करूंगा, बाहर से शांति लेने की कोशिश करूंगा, और ज्यादा गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा। अगर प्यार नहीं मिल रहा है तो मैं बाहर से उसको लेने की कोशिश करूंगा, मैं किसी के ऊपर डिपेंड हो जाऊंगा। और जब हमारा लगाव झुकाव चालू हो जाता है, हमारे में कमजोरी आना चालू होती है। इसलिए ये 7 गुण जिसको सतोगुण बताया गया, हम अपनी चेकिंग रोज करें कि मेरे में ये 7 चीजें हैं। अगर 7 चीजें मेरे में नेचुरल हैं, भरी हुई हैं, तो मेरे को किसी के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं रहती, मेरा डर नेचुरली खत्म हो जाता है। जो बाबा ने मुरली में बताया, डर उसी को लगता है, किसको डर लगता है, अभी रिसेंट मुरली में ही बाबा ने बताया, डर उसको नहीं लगेगा जो जो बोलो जो साफ और सच्चा होगा, साफ दिल होगा, जिसका हार्ट क्लीन होगा, यज्ञ के प्रति समर्पित होगा, जो ये कहेगा कि मैं यज्ञ के लिए जिम्मेवार हूं, यज्ञ मेरा है, व्यक्ति बाद में है। हम क्या करते हैं, अपने को सामने ले आते हैं, यज्ञ को पीछे ले लेते हैं, اور جب وہ رہتا ہے تو ڈر پیدا ہوگا ہی، اس کا کوئی سولوشن نہیں. پر جب ہم کلین ہو جاتے ہیں، صاف دل ہو جاتے ہیں، تو ہمارے من کی لڑائی بھی ختم ہو جاتی ہے. یہاں کنفلکٹ کیوں آتا ہے، ہمارے مائنڈ میں لڑائی کیوں چلتی ہے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں سچائی اور صفائی کی کمی ہے، جس کو بابا نے کیا پیوریٹی کی لیول کم ہے. پیوریٹی کیول باہر کی نہیں، پیوریٹی ہمارے جو وچاروں کی ہے. نیگیٹیوٹی نہیں ہے، ایشیا نہیں ہے، اہنکار نہیں ہے، یہ سب نہیں ہے، اور یہ ساتوں چیزیں میرے میں 100% ہے، تو تب میں کہہ سکتا ہوں میں باپ سمان بنتے جا رہا ہوں. تو سچائی اور صفائی یہ ایک میجر کیریکٹر ہے، ہمیں نمبر ون لے جا سکتا ہے. اگر ہمارا کلین ہارٹ ہے تو بابا روز ہمیں انٹیوژن دے گا، ٹچنگ کرائے گا، اور وہ ٹچنگ اگر ہم یوز کرتے ہیں تو ہم سکسیسفل بن سکتے ہیں. اس لیے بابا کا ہر بچہ سکسیسفل بن سکتا ہے، آگے جا سکتا ہے، اگر ایک کیریکٹر کو بھی دھارن کر لے کہ میں 100% یگ کے پرتی ذمہ وار ہوں. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی کہے یا نہ کہے، میں اس کا پارٹ ہوں، میں ٹیم ہوں. تو ہر ٹیم ممبر کی جب ریسپانسبلٹی رہتی ہے تو اس کا اپنے اوپر اٹینشن رہتا ہے، اور اٹینشن رہتا ہے تو جیسے ہی ایک تھاٹ آتا ہے اس کو ہم روک سکتے ہیں. کیونکہ لڑائی یہاں کیسے چلتی ہے؟ وچاروں کی لڑائی چلتی ہے. مہابھارت لڑائی کوئی باہر نہیں ہوئی تھی، مہابھارت کی لڑائی ہماری آتما کے اندر ہی چلتی رہتی ہے. از اے وار آف نیگیٹیوٹی اینڈ پوزیٹیوٹی، از اے وار آف فیتھ اینڈ فیئر، از اے وار آف لو اینڈ فیئر. منشیہ کی لڑائی اپنے آپ سے ہی ہوتی ہے، اور جو اپنے آپ میں جیت لیتا ہے وہی وشو میں جیت جاتا ہے، جو اپنے آپ سے ہار جاتا ہے وہ باہر بھی ہار جاتا ہے. تو پرماتما بھی ہمیں کیا کر رہا ہے، اپنے آپ سے جیتنا سکھا رہا ہے. اس لیے روز اچھے اچھے ٹائٹل بابا ہمیں دیتا ہے، کتنا چڑھا دیتا ہے ہمیں، تم وشو کے مالک ہو، تم ترکال درشی ہو. تو ہم لوگوں کا بھی نشہ کیا ہو جاتا ہے، چڑھتے جاتا ہے، اور ہماری کمزوریاں جو ہم میں ہے اس کو ہم آرام سے اگنور کرتے جاتے ہیں، اور ہمارے میں اچھائیاں چالو ہو جاتی. نیکسٹ، اگر ہمارے وچار بہت چلتے ہیں، نیگیٹو چلتے ہیں، چنتا والے چلتے ہیں، ڈر والے چلتے ہیں، جیون سے بھاگنے والے چلتے ہیں، اس کو ہی سائیکالوجی میں کہا گیا ڈپریشن. اور آج یہ دیکھا گیا کہ بہت یہ نراشا یا ڈپریشن کامن ہوتا جا رہا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جب ہم گیان کو اپنے لائف میں ٹھیک ریتی سے نہیں یوز کرتے تو تبھی بھی ڈپریشن آ جاتا ہے. اس لیے ڈپریشن کو ہمیں اپنے جیون میں آنا نہیں چاہیے. ایک وچار آئے گا، اس کے پیچھے کیا ہوگا؟ اگر ایک وچار کو ہم اپنے کمپیوٹر میں چائے پانی پلا دیتے، ہاں کیوں کہا تھا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، میں کمزور ہوں، ایک وچار کے پیچھے 100 وچار آ جاتے ہیں. اسی لیے کورو یعنی ملینز اور پانڈو یعنی 5، پانڈو یعنی پوزیٹیو تھاٹس اور کورو مینس نیگیٹو تھاٹس. اس لیے کورو کو دکھایا 1000 ملینز. تو ایک وچار آتا ہے اور اس کو ہم نے رکھ لیا آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، تو پھر اس چکر ویو میں ہم پھنس جاتے ہیں، پھر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے جیسے ہی ایک وچار آئے اس کو ہمیں اسی سمے ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، دوائی دینی پڑتی ہے. جیسے ایسیڈیٹی ہوتی ہے تو ہم اینٹاسڈ دیتے ہیں، درد ہوتا ہے تو انلجیسک دیتے ہیں. ایسے ہی ایک ڈپریشن کا نراشا والا وچار آئے تو اسی سمے اس کو انجیکشن لگائیے، جو بابا روز انجیکشن دیتا ہے اس کو ٹھیک کریے. اگر ایک بار اس سائیکل میں پھنس جاتے ہیں نراشا والے میں، سب لوگ یوگ کر رہے ہیں 8 گھنٹے، میرے سے تو ہوتا نہیں ہے، میں تو بہت پیچھے سے آیا ہوں، یہ جیسے جیسے ہم نیگیٹو تھاٹس کو ایکیوملیٹ کرتے ہیں وہ ہماری شکتی کو کھانا چالو کر دیتے ہیں، ہماری انرجی کو ڈسٹروائے کرنا چالو کر دیتے ہیں. نیکسٹ، اس لیے شریر کو بھی ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں پہلے وچاروں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. جیسے یہاں بتایا کہ हर विचार एनर्जी पैदा करता है, और अगर हम इस लेवल पे जाते हैं जिसको क्वांटम लेवल कहा जाता है फिजिक्स में, तो एनर्जी और मैटर को चेंज कर सकते हैं, एनर्जी मैटर को चेंज कर सकती है, और यही प्रिंसिपल हम यहाँ हृदय रोग की बीमारी में यूज कर रहे हैं। जिन व्यक्तियों को हार्ट की बीमारी हो जाती, ब्लॉक हो जाता है, कोरोनरी ब्लॉक, उसमें हम उनको जैसे सिखाते हैं मेडिटेशन, डाइट, एक्सरसाइज, एनर्जी लेवल बढ़ाते हैं, तो उनका ब्लॉक डिसॉल्व होना चालू हो जाता है। एनर्जी मैटर को डिसॉल्व करती है, एनर्जी लेजर का काम करती है, कहीं भी ब्लॉक है उसको क्लियर करते हुए आगे चलती है। नेक्स्ट, हमारे शरीर में हम कई तरह की खराब तत्व पैदा करते हैं, जिसको कहा गया टॉक्सिन करते हैं, और ये देखा कि जब हम खाना ठीक से परहेज नहीं रखते हैं, तला हुआ ज्यादा खाते हैं, मीठा खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, अहंकार में रहते हैं, तब हमारे शरीर में खराब तत्व ज्यादा पैदा होते हैं, जिसको कहा गया टॉक्सिन्स ज्यादा पैदा होते हैं, और अगर टॉक्सिन्स ज्यादा पैदा होते हैं, शरीर से नहीं निकालते, तो बीमारी पैदा करते हैं। इसलिए हमारा काम है कि इन टॉक्सिन्स को ज्यादा देर शरीर में न रहने दें। नेक्स्ट, क्योंकि हमारा मन शरीर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं ब्रेन है, यहाँ हमारे शरीर के अंग हैं, यहाँ आत्मा बैठकर सोच रही है, इसको कहा गया TEAM, टीम। टीम का अर्थ है, टी का मतलब है थॉट्स, ई का मतलब है इमोशंस, ए का मतलब है एटीट्यूड्स, एम का मतलब है मेमोरीज। अगर हमारी टीम अच्छी नहीं है तो पूरे शरीर में तरह तरह की बीमारियां चालू होगी। अगर हमारी टीम अच्छी है, टीम यानी विचार अच्छे हैं, दृष्टि अच्छी है, दृष्टिकोण अच्छा है, स्मृति अच्छी है, हमने पुरानी स्मृतियों को क्लीन कर दिया है, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होना चालू हो जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क मन मस्तिष्क शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ परमात्मा ने हमें स्विच नहीं दिया है कि क्या अंदर जाए क्या नहीं जाए, इसीलिए आजकल कहा जाता है थिंक बिफोर यू थिंक, सोचने के पहले भी सोचो। पहले कहा जाता था बोलने के पहले सोचो, अभी कहा जाता है सोचने के पहले सोचो। क्यों? क्योंकि अगर हम बहुत नकारात्मक सोचते हैं तो वो पूरे शरीर को खत्म करता जाता है, हमारी शक्ति को खाते जाता है। एक तरह से केले नकारात्मक विचार कैंसर के समान है। कैंसर में क्या होता है, नई कोशिकाएं, कमजोर कोशिकाएं बहुत जल्दी जल्दी बनती जाती है। हमारे शरीर में कोशिकाएं रहती है, सेल्स रहते हैं, जो बनते हैं और खराब होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, ये साइकिल नॉर्मली चलता रहता है। हर शरीर के अंग में नए कोशिकाएं बनती है और खत्म होती है, पर कैंसर में क्या होता है, कमजोर कोशिकाओं का नंबर ज्यादा बढ़ जाता है और अच्छी कोशिकाओं का नंबर कम हो जाता है, और वो खराब कोशिकाएं अच्छी कोशिकाओं को खत्म करती जाती है। इसलिए कैंसर वाले मरीज को कमजोरी जल्दी आ जाती है, उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इसी तरह से हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स चलते हैं वो कैंसर के समान है, वो हमारे अच्छे विचारों को भी खत्म करते जाते हैं, और फिर हमारी शक्ति खत्म होती जाती है, और फिर कोई सी भी बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे, नेक्स्ट, और ये देखा गया कि किस तरह के विचार कौन सी बीमारी पैदा करते हैं। एक डॉक्टर ने पूरी स्टडी की कि कौन से विचार कौन से शरीर के अंग को खत्म करते हैं। जैसे बहुत व्यक्ति जल्दी जल्दी करता है, हर काम में रुकता ही नहीं है, हर चीज जल्दी जल्दी आएगा भी तो हम देखते हैं डिस्पेंसरी में जल्दी घुसेगा, पहले घुसने की कोशिश करेगा, और ज्यादातर यही देखा नेचर हमारा क्या रहता है, बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, और जबकि हम यहाँ आए हैं, यहाँ कोई काम नहीं है, आराम से बैठो, धीरे धीरे डॉक्टर को देखो। पर नेचर क्या है, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी में हरी का नेचर इतना बन गया है, और जो जितना ज्यादा हरी करता है, अपसेट होता है, उसको स्टमक की बीमारियां जल्दी होती है। हृदय रोग की बीमारी किसको होती है? जो निराश होता है, चीजों को पकड़ता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है, हर चीज मेरे समान होए, इम्पेशेंट रहता है, उनको हृदय रोग की बीमारी जल्दी होती है। तो उसने ये देखा, अलग अलग विचार अलग अलग बीमारियां पैदा करते हैं। जिसको बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, जल्दी जल्दी नाराज हो जाता है, तो उसको लीवर की बीमारी और हार्ट की बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं। लीवर उसका नुकसान होने लगता है, खाएगा तो वजन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको चिड़चिड़ापन अंदर बना हुआ है। तो ये इमोशन हमारे बीमारियों से जुड़े हुए हैं। अगला, इसलिए पहला चीज हम क्या करें, अब ये तो सब नेगेटिविटी है, पर अब हम कैसे इसको ठीक करें? तो पहला प्रिंसिपल जो बताया गया, जो परमात्मा ने हमें सिखाया, आप अपने को स्वीकारो, एक्सेप्ट करो। बाबा के ही शब्दों में, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। मेरे को जो पार्ट दिया गया, जहाँ पैदा हुआ, जिस घर में पैदा हुआ, बहुत अच्छा है। उससे लड़े नहीं, पार्ट से झगड़ा नहीं करें। पार्ट से झगड़ा करते हैं कि अगर मैं ऐसा होता, घर में सब ज्ञान में चलते तो कितना अच्छा होता, वो हो गई लड़ाई चालू। उसको नहीं लड़ो, कोई चले या ना चले, मैंने अपने को एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे को जो परमात्मा ने सृष्टि रंगमंच पर पार्ट दिया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बिलीव उसके ऊपर पूरा एक्सेप्ट करो। नेक्स्ट, इसीलिए जितनी भी फिलोसॉफीज आई, हमारा पहला लेसन भी काय पे आता है, जितने भी फिलोसोफर्स आए, सोक्रेट आया, मार्कस आया, और हमारा भी पहला लेसन क्या है? और अच्छा बोलो, केवल आत्मा नहीं, उसको थोड़ा मेथोडिकल बोलो। जब हम बाहर वालों के सामने जाते हैं तो अच्छे वर्ड्स का यूज करते हैं। आप अपने को पहचानिए, नो योर सेल्फ, जो इसने कहा था ना, नो योर सेल्फ, बी दाई सेल्फ, लव दाई सेल्फ। आप अपने को पहचानिए। पर्सनालिटी का अर्थ ही होता है जो मेरे अंदर है, मैं उसको पहचान कर बाहर निकालूं, बाहर उसको यूज करूं, एक्सप्रेस करूं। नेक्स्ट, इसीलिए जो व्यक्ति अपने को स्वीकारता है, उसकी मन की लड़ाई कम होती है। उससे कोई भी पूछेगा आप कैसे हो, वो कहेगा मैं ठीक हूं, आई एम ओके। चाहे तकलीफ हो रही है, बीमारी है, फिर भी वो क्या कहेगा, मैं ठीक हूं, आप ठीक हो, और सब कुछ ठीक है, आई एम ओके, यू आर ओके, एंड एवरीबॉडी ओके। और जो जिसकी मन में लड़ाई चलती रहती, वो क्या कहेगा, अरे कुछ नहीं है, ठीक, आज बड़ा गड़बड़ हो गया, मेरी आज ये तकलीफ हो रही है, या हॉस्पिटल जाना है, आज बिल्ली रास्ता काट गई, दूध गिर गया। तो वो हमेशा नेगेटिविटी का बखान करेगा, और जितना नेगेटिविटी बोलेगा, उतनी उसकी लड़ाई बढ़ती जाएगी, लड़ाई विचार बढ़ते जाएंगे। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस दुनिया में सब कुछ ठीक है, ड्रामा में, ड्रामा को चेंज कर सकते क्या? जब हम ड्रामा को चेंज नहीं कर सकते, ड्रामा जैसा आदि अविनाशी चल रहा है, इटर्नल, वो चलता रहेगा। मेरा काम क्या है, ड्रामा के साथ खड़े हो जाऊं और चलने दो ड्रामा को, चल, और मैं उसके साथ चलते रहूं। जैसे बॉम्बे में होता है ना, सबवे ट्रेन में जाना होता है, और आप नए नए गए हो तो आपको क्या करना चाहिए, भीड़ में खड़े हो जाओ, भीड़ धक्का मारेगी आप अंदर, भीड़ धक्का मारेगी आप बाहर, कौन से स्टेशन उतर गए पता नहीं। तो ऐसे ही लाइफ में क्या है, फ्लो, हर चीज नेचुरल चल रही है। आप देख रहे हो ना, पक्षी, बर्ड्स, कोई स्कूल में जाते हैं क्या, कोई ट्रेनिंग लेने जाते हैं वो उड़ना सीख जाता है, कोई फ्लाइंग क्लब में जाते हैं क्या, बर्ड्स खुद ही सीख लेते हैं, नदी बहती रहती है, नेचुरल बहती रहती है। तो ऐसे ही ड्रामा भी क्या है, नेचुरल चलता रहता है, उसके साथ मैं क्या करूं, फ्लो होते रहूं। जैसे नदी में डर लगता है तैरने से, तो आप क्या हो जाओ, अशरीरी होकर करो, तो फ्लोट होने लग जाओगे, खुद ही फ्लोट होते जाओगे। ऐसे ही इस लाइफ में भी हम क्या करें, रोज खड़े हो जाएं ड्रामा के पट्टे पर और उसको फ्लो करने दें। मेरा काम है कि कहां वो ले जाएगा, अच्छी जगह ही ले जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर जो पार्ट भरा है, बहुत अच्छा पार्ट भरा हुआ। नेक्स्ट, اسی لیے کہا جاتا ہے آپ اپنے لائف کے ڈائریکٹر ہو، پروڈیوسر ہو، سافٹ ویئر انجینئر ہو، آپ اپنا سافٹ ویئر خود تیار کر سکتے. جیسے کمپیوٹر میں ہم سافٹ ویئر تیار کرتے ہیں، اس آتما روپی سافٹ ویئر کے ہم کیا ہیں؟ ماسٹر ہیں. جو پروگرام مجھے آج کے دن بھرنا ہے میں اس میں بھر سکتا ہوں اور اس کو مجھے پلے کرنا ہے. اسی لیے کہا کہ آپ سرشتی رنگ منچ پر بہت اچھے کلاکار ہو، یونیک کلاکار ہو. اور ایکٹر کا کام کیا رہتا ہے؟ ایکٹنگ کرنا. ایکٹر ریئیکٹ نہیں کرتا ہے. جب ہم کیوں، کیا، کیسے، ہاؤ، وائی، واٹ، یہ تین شبد لاتے ہیں کمپیوٹر میں تو تب جھگڑا چالو ہوتا ہے. تو ایکٹر کا کام ہے جو مجھے ایکٹنگ اس ڈائریکٹر نے دی ہے اس ایکٹنگ کو کرتے جانا، اچھی طرح سے میں ایکٹ نہیں کروں، ریئیکٹ نہیں کروں. ریئیکٹ کریں گے تو شریر بھی ریئیکٹ کرے گا. ایک یہاں ریئیکشن ہوتا ہے، یہاں ریئیکشن ہو جاتا ہے. ایک وچار آیا، یہاں ایسیڈیٹی ہو گئی. ایک وچار آیا، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. ایک وچار آیا، ہارٹ کی دھڑکن بڑھ گئی. ایک ڈر کا وچار آیا، سانس تیز چلنے لگ گئی، پسینہ آنے لگ گیا. کیوں ہوا؟ وچار تو یہاں آیا اور پسینہ ہاتھ میں، پاؤں کانپنے لگ گئے. کیوں ہوا؟ ایک ڈر کا وچار پورے شریر کو ہلا دیتا ہے اور ایک سمرتھ وچار پورے شریر کو شکتیشالی بنا دیتا ہے. اس لیے جب کبھی بھی نیگیٹو تھاٹ آئے، گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، اس کو دیکھو آ رہا ہے، اسی سمے ایک پوزیٹو تھاٹ کھڑا کر دو. وہ لڑائی دکھائی تھی نا پانڈو کورو کی، وہ تیر نکالتا تھا، تیر کمان پر لگانے کے پہلے کہاں چھوڑ لگ رکھتا تھا؟ یہاں. پھر تیر چھوڑتا تھا. تو طاقت کس میں تھی؟ سنکلپ شکتی میں تھی. اور دوسرا یودھا بھی کیا کرتا تھا؟ وہ بھی نکال کر یہاں رکھتا تھا اور چھوڑتا تھا. وہ دونوں تیر آ کر ملتے تھے. جس کا تیر شکتیشالی ہوتا تھا وہ گھس جاتا تھا، اور جس کا تیر کمزور ہوتا تھا واپس آ جاتا تھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اس من کی لڑائی کا ہی کھیل بتایا پانڈو اور کورو. اگر میرا پوزیٹیو تیر اسٹرانگ ہے، نیگیٹو آیا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، لیکچر دینے گیا ہوں، ایک دم ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں، ادھر اناؤنس کر رہے ہیں آپ کا نام آ گیا ہے، اندر ڈر چالو ہو گیا، ارے سامنے والے اتنے جنتا کو دیکھنے لگ گیا، ڈر چالو ہو گیا. جیسے ہی آنکھوں میں دیکھنا چالو کیا، چالو ہو گیا. باڈی بھی کیا کرے گی؟ یہاں ٹائٹ لگنے لگے گا، پسینہ آنے لگے گا، تھر تھر کانپنے لگیں گے. اسی سمے کیا کرو؟ ایک اچھا وچار پیدا کر دو، میں ماسٹر سرو شکتیوان ہوں. شروع شروع میں جانا چالو کرتے تھے، پبلک کو دیکھتے تھے تو جیسے ہی آنکھوں سے آگ دیکھتے تھے ڈر چالو ہوتا تھا. تو پھر ایک سنکلپ دیتے تھے، جب تک وہ بول رہا ہے پھر ایک سنکلپ دے دیتے تھے، نہیں نہیں میں شکتیوان ہوں، میں نے کل پہلے بھی دیا تھا، ہے پرماتما تو آ جانا. تو دیکھتے ہیں پورا شریر نارمل ہو جاتا ہے، نیچرل ہو جاتے ہیں، پھر وہ بولنا چالو کر دیتا ہے. تو سنکلپ ہمیں شکتی دیتے ہیں، سنکلپ ہی ہمیں شکتی کو ختم کرتے ہیں. اسی لیے اپنے کو ہمیشہ، ہنومان کیا دکھایا، اس کا کانفیڈنس بہت اچھا تھا، ول پاور اچھا تھا. جب لڑائی کی بات آئی کہ کون راون کے پاس جائے گا تو سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے، کون جائے گا، میں تو اتنا ہی جمپ مار سکتا ہوں. جب اس اوشن کو کراس کرنا تھا تو سب نے کہا ہم نہیں کراس کر سکتے. تو پھر جامون کی نظر ہنومان پر پڑی، اس نے ہنومان کو یاد دلایا کہ تیرے میں وہ طاقت ہے، تو یہ کر سکتا ہے. ہنومان میں کوئی طاقت اس سمے تھی نہیں، ہنومان کو یاد دلایا کہ جب تو چھوٹا بچہ تھا، سورج کو پکڑنے جاتا تھا. جیسے ہنومان کو اسمرتی آ گئی ویسے ہنومان کی شکتی بڑھ گئی. تو پرماتما بھی ہمیں کیا کر رہا ہے؟ 18 جنوری والی وانی میں بابا نے بولا اسمرتی سو سمرتی. بابا بھی آ کر سمپل ایک گیم کھیلتا ہے، ہمیں اسمرتی سوروپ بنا دیتا ہے. تم ہی وہی دیوتا تھے، تم میں وہ اسیم شکتی ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم تھا ہم ہی دیوی دیوتا بننے والے ہیں. پر جیسے بابا نے ہمیں اسمرتی دلائی، ہمارا کانفیڈنس بڑھ گیا. چھوٹی چھوٹی بہنیں دادیاں یگیہ میں آئی، کوئی پڑھائی ایجوکیشن اتنا نہیں تھا، پر جیسے جیسے بھگوان نے ان کو ٹریننگ دیتا گیا، وہی دادیاں آج लीडर बन गई। ऐसे ही बाबा भी हमें क्या करता है, रोज स्मृति बनाता है। तो जितना हमारी स्मृति अच्छी होगी उतनी हमारी समृद्धि अच्छी होगी, और जितना हमारा समृद्धि अच्छा होगा उतना हमारा नेगेटिविटी कम होगी। तो हमेशा अपने स्मृति को इमर्ज करके रखिए। जब कभी भी जाएं, जहां जाएं, एक सेकंड पहले रुक जाएं। जैसे हम भी दादी को देखते हैं, बड़ी दादी कहीं भी जाती है तो पहले बाबा के कमरे में जाएंगे, फिर कहीं जाएंगे। तो एक सेकंड उस समय अगर हम बाबा को इमर्ज करते हैं और दिल से कहते हैं, मेरा बाबा, जो बाबा ने मुरली में कहा, रिसेंट मुरली में, कि अगर आप दिल से इसको कहते हैं, फेथ से कहते हैं, कॉन्फिडेंस से कहते हैं, तो फिर बाबा का काम हो जाता है मदद करना। वो करेगा ही, उसकी ड्यूटी है। पर अगर हम दिल से नहीं कहते, कॉन्फिडेंस से नहीं कहते हैं, तो वो कहता अच्छा करते रहो तुम, टेंशन किसको आना चाहिए, जैसे बाबा ने कल का या आज का, मेरा काम है विश्व को परिवर्तन करना, आज ही का, तो तुम क्यों चिंता करते हो। हम लोग टेंस हो जाते हैं, बड़े स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, सेवा में इतने स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। अब काम तो उसका है, मैं क्यों चिंता करूं। इसी पे एक कहानी इसी की आई, रामायण की। जब अंगद गया रावण के दरबार में और उसने अपना पांव रख दिया कि अगर किसी ने पांव को हिला दिया तो सीता आपकी। सबने कोशिश कर ली, कोई पांव को हिला नहीं पाया। जब अंगद वापस आया अपने ग्रुप में तो उसके ग्रुप के दोस्तों ने कहा, अरे अंगद तूने तो आज बहुत गड़बड़ कर दी थी, अगर तेरा पांव हिल जाता तो सीता उनकी हो जाती। अंगद ने कहा, मैंने क्या किया, मैंने पांव रख दिया, सीता तो मेरी थी नहीं, राम की थी, टेंशन राम को आए मेरे को क्यों आए। तो हमें क्या करना है, हमें केवल पांव को रख देना है। एक पांव उठाने में ही मेहनत है, और जो बच्चा एक पांव उठा लेता है बाबा उसको मदद करता है। मैंने तो अपने लाइफ के कई अनुभव देखे, अच्छे अच्छे टफ जगह गया जहां मुझे भी डर लगा। एक जगह का रियल एग्जांपल बताता हूँ कैसे संकल्प को यूज किया। एक बार एक मेडिकल कॉलेज में, कई साल पहले, 10 साल पहले अभी जब शुरू ही किया था हमने, मेडिकल कॉलेज में लेक्चर का समय मिला। टॉपिक मुझे दिया गया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब जैसे मैंने सोचा कि मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट होंगे, जैसे ही मैं नेचुरल गया, मैंने कहा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन उनको आराम से एक घंटा लेक्चर देंगे। जैसे ही हॉल के अंदर गया तो देखा सब लोग प्रोफेसर लोग बैठे हुए थे, मेरे से भी सीनियर। अब आप जानते हो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर सब टाइट होकर बैठते हैं, हाथ पे हाथ रखकर, हमें सब आता है आपको कुछ नहीं आता। अब जैसे ही उनके चेहरों को देखूं टेंशन चालू हो गए। तो वो प्रोफेसर मेरे को इंट्रोड्यूस करना चालू किया, मेरा डर बढ़ता गया। जैसे जैसे उनको देखूं सब ऐसे सूखे बैठे हुए, तो मैंने कहा मैं तो गया काम से, आज बोल भी नहीं निकलेंगे, मुंह सूखने लग गया। तो फिर उसी समय मैंने कहा, हे बाबा आज तुझे आना है, मेरे से लेक्चर नहीं होगा, आज तुझे लेक्चर देना है। दिल से कहा मेरा बाबा। तो जैसे ही लेक्चर देना चालू किया सब नॉर्मल हो गया, सब डरवर निकल गया। मैंने कहा आज मुझे थोड़ी लेक्चर देना, उसको देना है, उसको जो बोलना है बोले, 5000 वर्ष पहले जो बोला था वही बुलवाएगा। बोलते गए एक घंटा निकल गया, सब प्रोफेसर लोग इतने खुश हो गए कि हर महीने आप आया करो। क्या हुआ, आपका कॉन्फिडेंस, आपका फेथ, आपका बिलीफ सिस्टम। अभी हम गोवा गए थे, अभी लास्ट 2 दिन पहले ही आया। गोवा में क्या कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। गोवा में सब लोग टूरिस्ट एरिया है, खाने पीने वाले लोग हैं, फिश खाते हैं और बियर पीते हैं, ये नॉर्मल वहां का कल्चर है। अब वहां की बहन जी भी बहुत डर रही थी कि करेंगे हेल्थ मेला, कोई आएगा नहीं, बड़ी डरी हुई थी। फिर भी उसने हिम्मत रखकर, सब भाई बहनों ने हिम्मत दिलाई, किया। जाने के पहले मैंने भी सोचा, बाबा वहां अलग तरह के लोग हैं, तू ही आकर कुछ वहां करामत दिखाना, ये साल सफलता का वर्ष है, तू कुछ ऐसी चीज दिखाना कि तेरी करामत हम देखें। तो वहां जाकर देखा कि उद्घाटन में हेल्थ मिनिस्टर आया, बहुत अच्छा क्राउड रहा, बहुत अच्छा क्राउड देखने को आया, और सबसे बड़ी बात चीफ मिनिस्टर खुद चलकर आया कि मैं 26 जनवरी के दिन आऊंगा, گورنر نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا، اپنا وہ دیا، اور پورے شہر میں پنجی میں ایک بہت اچھا پازیٹیو ریسپانس بن گیا۔ بابا نے جو بلوایا وہ بلوایا، پر بابا دیکھو کیسے کام کرتا ہے، جب اس کو ہم دیتے ہیں تو پورے شہر میں ایک پازیٹیو واتاورن بن گیا، اور وہاں کے ہی بھائی بہنوں نے، بہن نے کہا کہ ایسی سیوا ابھی تک شہر میں کبھی نہیں ہوئی تھی، لوگ آتے ہی نہیں تھے، 10-12 آتے تھے، کیونکہ وہاں رات ہوئی سب اپنے اپنے گھروں میں غائب ہو جاتے ہیں، پر یہاں جب ہم بابا کے اوپر فیتھ رکھتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے۔ وہاں کا جو سلوگن ہے، کیپشن ہے، بیئر بار بہت ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں اف یو وانٹ ٹو گو ان ہیون کم اینڈ ڈرنک بیئر۔ کیوں؟ ان کا یہ بار کے اوپر، ایک بار پہ یہ لکھا ہوا تھا، اگر آپ کو سورگ جانا ہے تو آئیے بیئر پیجیے۔ کیوں؟ کہ جب وہ بیئر آ کے پیے گا، پڑا رہے گا، رات بھر سو جائے گا، تو پاپ کرم نہیں کرے گا، اور پاپ نہیں کرے گا تو سورگ میں جائے گا۔ تو یہ گوا کا کلچر رہے گا۔ نیکسٹ، تو بلیف سسٹم ہمارا اسٹرانگ ہو، دوسرا ہمارا جیون میں بیلنس ہو، ہیڈ اور ہارٹ دونوں کا بیلنس ہو۔ گیان میں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم بہت بھاوک ہو جاتے ہیں، ایموشنل ہو جاتے ہیں، سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، ارے بس اب وناش ہو رہا ہے، چھوڑو کیا کرنا۔ لائف ایموشنل گیم نہیں ہے، لائف میں ہمیں دونوں کا بیلنس چاہیے، کہاں ہیڈ کو یوز کرنا ہے، کہاں ایموشن کو یوز کرنا ہے، ورک کیا ہے، کاریہ کیا ہے، لوجیکل ہے، تو دونوں کا بیلنس رہیں، کہاں بیزی رہیں، کہاں ایزی رہیں، کہاں بچہ بنے، کہاں مالک بنے، ماسٹر اینڈ چائلڈ، بالک اور مالک، مالک بن کر ایڈوائز دیں اور بالک بن کر چھوڑ دیں۔ ہمارا کام تھوڑی، ہم ایڈمنسٹریشن میں تھوڑی، ہم نے ایڈوائز دی، اب کرنا ہے نہیں کرنا ہے وہ لوگ جانے، نہیں تو کنفلکٹ چلتا ہے، میری آئیڈیا کو امپورٹینس نہیں دیا گیا، میرا کوئی نہیں سنتا، آرام سے بیٹھ جاؤ، آپ ایڈوائز دو ماسٹر بن کر، اور پھر بچے بن جاؤ بھگوان کے سامنے، دیکھو یوگ لگانا ہے تو تب بچے بن جاؤ، تب ایموشنل بن جاؤ۔ پر لائف میں دوسرے جو چیلنجز ہیں، اس سمے دونوں کا بیلنس، ہیڈ اور ہارٹ، ہارٹ کو کہاں یوز کرنا ہے، ہیڈ کو کہاں یوز کرنا ہے۔ نیکسٹ، بیلنس اپنے وچاروں کا، شبدوں کا، سمے کا اور کاریہ کا، یہ چاروں کا ہمیں بیلنس رکھنا ہے، کہاں کتنا بولنا ہے، سمے کا بھی ہمیشہ دھیان رکھنا ہے۔ گیان دینا ہے تو 7 دن کا کورس ایک گھنٹے میں کرا دو تو بےچارے کو کیا ہوگا، ٹینشن آ جائے گا، تو اس کو دھیرے دھیرے کتنا دینا ہے، سب کی پلس دیکھو، اس آتما کی کیپیسٹی کتنی ہے، اس کے انوسار اس کو گیان دو۔ تو ان چیزوں کا بھی ہمیں پبلک کے سامنے دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ جب کبھی ہم پبلک کے سامنے جائیں، اپنے بول کیلکولیٹڈ بولیں، اور آج کل لوگ سننا نہیں چاہتے، آج کل لوگ فیل کرنا چاہتے ہیں، انوبھو کرنا چاہتے ہیں، وہ تبھی ہوگا جب آپ کے بول کم ہو، کیلکولیٹڈ ہو، تب آپ کے سنکلپ بھی وائبریشن دیں گے، نہیں تو بولتے 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 اتنا تھک جاتے ہیں کہ بعد میں یوگ کرانے جاؤ کوئی وائبریشن ہی نہیں نکلتے۔ اس لیے دونوں کا بیلنس ہونا ضروری ہے۔ نیکسٹ، یہ ایک سچویشنز بنائی کہ کیسے ہم اپنے کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں۔ 4 سچویشن ہیں، خود کے لیے ہم اپنے درشٹیکون کو اچھا رکھیں، اپنے سمبندوں میں اپنے ویوہار کو اچھا رکھیں، کام کے سمے لاجیکل سوچیں، اور جو جیون میں پریستھتیاں آتی ہیں تو بھاونا میں بہ نہیں جائیں، ایموشنل نہیں ہو جائیں، ہارٹ اٹیک نہیں ہو جائیں، نہیں تو کئی لوگ بہت سینسیٹیو نیچر کے ہوتے ہیں نا، بھاونا والے، پکچر دیکھیں گے رونے لگ جائیں گے، کرکٹ میچ ہوگا تو ان کا دل دھڑکنے لگتا ہے کہیں کچھ ہو تو نہیں جائے۔ اس لیے بھاوناؤں میں نہ بنے، دونوں کا بیلنس رکھیں۔ یہاں بھی جب ہم آئیں، مدھوبن میں بھی آئیں، ہر چیز کو آرام سے دھیرے دھیرے بیلنس میں کریں، نہیں تو کئی لوگ یہاں آتے ہیں بھائی بہن، ہم دیکھتے ہیں گولیاں چھوڑ دیتے ہیں، بلڈ پریشر کی گولی چھوڑ دی، ڈائبٹیز کی گولی چھوڑ دی، دل کی گولی، اور انہیں کوئی ہارٹ اٹیک آ جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں کہ ارے یہاں تو آ گئے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بابا یہ کبھی نہیں کہتا۔ آپ کی جو دوائیاں ہیں وہ لو، اور جس کو پرابلم ہے وہ دھیرے دھیرے ہر کام کرے، نہیں تو فریکچر کتنے ہو جاتے ہیں کیول اس سے، جلدی بازی سے۔ تو وہ بھی ہم دھیان رکھیں، یہاں رہتے بھی کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا ہے، ان چیزوں کا बैलेंस रखें, तो इमोशनल भी नहीं हो जाएं। खुद में चेंज लाना है तो अपने दृष्टिकोण में चेंज लाएं। नेक्स्ट। तो इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हो तो पहले आपको अपने सोच में चेंज करना पड़ेगा। अगर उसी तरह का सोच रहे हो जब आपने किसी प्रॉब्लम को क्रिएट किया, तो आप उस प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकते। आपको उस प्रॉब्लम से ऊपर जाना पड़ेगा, तब आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहा जाता है लैटरल थिंकिंग, ऑब्जर्वर स्टेज, बाबा के शब्दों में साक्षी दृष्टा। जब हम साक्षी दृष्टा होकर हर सीन को देखते हैं तो हमारे में नेचुरल डिटैचमेंट रहता है। डिटैचमेंट रहता है, इसका अर्थ है कि कोई भी कार्य का असर मेरे ऊपर नहीं होता है, कार्य कर गया और समाप्त। तो तब हमारे मन का युद्ध ज्यादा नहीं चलता। कार्य का सक्सेस और फेल्यूर भी मेरे को असर न करे, इसको कहा जाता है डिटैचमेंट। लास्ट चलते, अभी रिसेंटली विंबलडन चैंपियन जो लास्ट ईयर की थी, उसने भी कहा था कि जब कभी भी मुझे मैच जीतना हो तो पहले मैं अपने मन में सोचती हूँ कि मुझे मैच जीतना है, तो तब मैं मैच जीत जाती हूँ। नेक्स्ट। इसलिए हाँ ये दिखा, इसलिए हम अपने इस कंप्यूटर में अच्छी चीजें डालें। अगर हमारा इनपुट अच्छा होगा तो आउटपुट भी अच्छा होगा। अगर खराब चीजें इसमें डालेंगे तो खराब चीजें ही निकलेगी। अगर गुड आइडियाज डालेंगे तो गुड आइडियाज आउट होगी, और बैड आइडियाज इन किया तो बैड आइडियाज आउट होगी। तो ये भी हम दिन में बार बार चेक करें कि मैं इस कंप्यूटर में क्या डाल रहा हूँ, क्योंकि खाली एक घंटा बैठने से मेरा योग नहीं लगेगा। अगर दिन भर मेरी दिनचर्या अच्छी है, सुबह से लेकर शाम तक, तभी मेरा कंप्यूटर ठीक रीति से काम करेगा। इसीलिए मैं तीन शब्द हमेशा यूज करता हूँ, गॉट, जी ओ डी। सुबह उठने पर जी, जनरेटर, नई आइडियाज पैदा करूं, योग के समय परमात्मा से कनेक्शन करूं और करंट पैदा करूं, फिर दिन में ऑपरेट करूं। दिन में मुझे विष्णु बनना है, सुबह ब्रह्मा बनना है, दिन के समय कार्य करते समय मुझे उसको यूज करना, ऑपरेट करना है, जो करंट मैंने परमात्मा से लिया उसको यूज करें। और रात को फिर मैं शंकर बन जाऊं, डिस्ट्रॉय, डी, डिलीट। डिलीट क्या करना है, जो आज दिन भर मैंने गलतियां की, प्रॉब्लम्स आए, कहां मेरी हार हुई, उसको डिस्ट्रॉय कर दूं। तो फिर से मेरा जो कंप्यूटर की मेमोरी है अच्छी काम करेगी। नहीं तो मेरी कंप्यूटर में मैंने डिस्ट्रॉय नहीं किया तो क्या होगा, कंप्यूटर लोडेड हो जाएगा, हेवी हो जाएगा, और फिर दूसरे दिन भी हेवी रहेगा, नींद भी ठीक नहीं आएगी। इसलिए रात को मैं शंकर बनकर अपनी कमजोरियों का विनाश करूं, हल्के होकर सो जाऊं, तो फिर सुबह मेरे कार्य अच्छे होंगे। तो जी ओ डी, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर, तीनों का मैं दिन भर इसको यूज करूं। नेक्स्ट। ये मेडिकली भी बताया गया कि हमारे में दो साइड है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट सोचने वाला है और राइट भावना वाला है, तो दोनों का हम बैलेंस रखें। ये फिर गहरी क्लास है, फिर आगे कभी बताएंगे कि कैसे हम मेडिटेशन कर सकते हैं, बढ़ाते हैं। ये हमारा आत्मा काम कर रही है, माइंड यानी एम, इंटेलेक्ट यानी आई, संस्कार यानी एस, हमारा MIS सिस्टम काम करता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मस्तिष्क के द्वारा काम कर रहा है। माइंड कैसे काम करता है, विचार पैदा करता है, इंटेलेक्ट फिल्टर का काम करता है, और संस्कार रिकॉर्डिंग करता है। तो अब ये कैसी रिकॉर्डिंग मुझे करनी है, वो फिर हम कभी कैसे उसको डिटेल में बताएंगे कि कैसे हम कंप्यूटर से नेगेटिव प्रोग्राम को रिमूव कर सकते हैं और कैसे हम इसको पॉजिटिव प्रोग्राम डाल सकते हैं। नेक्स्ट। तो रोज एक प्रोग्राम अपने लिए सिलेक्ट कर लें। आज के दिन मैं अच्छी तरह सबसे बात करूंगा, आज के दिन मैं टाइम पर रहूंगा, आज के दिन मुस्कुराकर सबसे बात करूंगा। एक एक प्रोग्राम भी ले लिया दिन में, तो हम देखेंगे हमारा सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव प्रोग्राम से भरता जाएगा, तो नेगेटिव फाइल हमारी कम यूज होगी, फिर पॉजिटिव फाइल ज्यादा यूज होगी। नेक्स्ट। तो ये बाबा के ही मूल्यों में से कुछ पॉइंट्स लिए। पहले स्पीड को कम करिए, विचारों की स्पीड को हल्का करिए, दूसरा अपने अंदर सर्च करिए, जितना सर्च करेंगे उतना सर्च लाइट बनेंगे। सर्च लाइट वही बन सकता है जो अपनी सर्च रोज करता है। उसी से हमारा विल पावर और वाइट पावर होगा। वाइट पावर यानी बेहद की दृष्टि वृत्ति। रोज बचत की स्कीम हम बनाएं, एक एक सेकंड को बचाएं, बहुत ज्यादा नहीं सोचें, एक सेकंड को यूज करें उसको बचाएं। अपना कनेक्शन सुबह अच्छा रखें तो तब करेक्शन रात को कर सकते हैं। कनेक्शन एंड करेक्शन। बीच बीच में हफ्ते में एक बार अंतर्मुखता की गुफा में जाएं और अपने अंदर जो भी किचरा है उसकी सफाई करें। ट्रस्टी बनकर हर कार्य करें कि ये कार्य परमात्मा ने दिया है, मेरा नहीं है। अंतर और मंतर, नॉट और डॉट, एक विचार एक समय पर, व्यर्थ को चेंज करते जाएं समर्थ में। नेक्स्ट नेक्स्ट। आप अपने बगीचे का खुद मास्टर बनिए, कंस्ट्रक्ट करिए, क्लीन करिए और कंडक्ट करिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर। नेक्स्ट। अपनी शक्तियों को यूज करिए रोज, जो बाबा ने हमें सिखाई है। इसमें सबसे बड़ी शक्ति चाहिए रहती है विस्तार को संकीर्ण करने की और समेटने की शक्ति। ये दो शक्तियां अगर हम रोज बीच बीच में यूज करते हैं तो हम सार स्वरूप बनते जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट। तो ये पूरा 7 पॉइंट्स हैं कैसे हम अपने नेगेटिव प्रोग्राम को पॉजिटिव में बना सकते हैं। नेक्स्ट। तो हमेशा अच्छा सोचें, हमेशा ये सोचे कि मैं विजयी स्वरूप हूँ, विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हर दिन मेरे को विजय प्राप्त करना है। नेक्स्ट। कुछ समय अपने लिए दें, अपने सोच के लिए दें, मंथन के लिए दें, हमें जो अच्छा लगता है उसके लिए दें। लास्ट। तो हे परमात्मा, मुझे शक्ति देना कि जिससे मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम आए उसको अच्छी रीति से ठीक कर सकूं, और रोज अपने शरीर को अच्छे वाइब्रेशंस के द्वारा, पॉजिटिव वाइब्रेशंस के द्वारा शरीर को भी स्वस्थ रखूं। एक स्वस्थ संकल्प आप ले सकते हैं, मैं स्वस्थ हूं, मैं ठीक हूं। एक विचार आप अगर अंदर अपने कंप्यूटर में लेंगे, उसी विचार को अंदर जाने दीजिए। अभी एक सेकंड के लिए हम कर, अभी सीधे बैठ जाएं, बिल्कुल स्ट्रेट, आराम से रिलैक्स होकर बैठिए। अपने को टेंशन में नहीं लाइए, इजी रिलैक्स होकर, नेचुरल होकर एक पॉइंट को याद करिए, शिव बाबा को सामने देखिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इस शक्ति को शरीर के सभी अंगों में जाने दीजिए। वाइब्रेट करने दीजिए। अनुभव करिए, मैं स्वस्थ हूं, शरीर की सभी कोशिकाएं स्वस्थ हैं। वापस ऊर्जा शक्ति को दो आंखों के बीच, भ्रुकुटी के मध्य स्थित करिए। एक सेकंड साइलेंस में, बिल्कुल डीप साइलेंस में